ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार की आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध के कारण प्रतिनिधि सभा की बैठक स्थगित। वहीं नीति तथा कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सभा में चर्चा शुरू। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रथम महाधिवेशन आगामी आषाढ़ 7 से 9 तक चितवन में आयोजित करने का केन्द्रीय कार्य समिति का निर्णय। मंत्रिपरिषद द्वारा नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 स्वीकृत। सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति वीरेन्द्र नगर के तत्कालीन सदस्य सचिव टीकाराम ढकाल सहित 5 लोगों के खिलाफ अख्तियार द्वारा विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिवसीय चीन दौरे के दौरान आज बीजिंग में। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक विपक्षी दलों के विरोध के कारण स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की उपस्थिति की मांग करते हुए विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक में अवरोध किया। लगातार तीसरी बार बैठक सुचारू न हो पाने के कारण सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभामुख अर्याल ने कहा कि 2 बार स्थगन के बाद पुनः शुरू हुई बैठक में भी विपक्षी सांसद अपने पुराने रुख पर कायम रहे और अवरोध जारी रखा। उन्होंने जानकारी दी कि कल होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह उपस्थित रहेंगे तथा अपनी धारणा भी प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले बैठक में प्रधानमंत्री शाह की ओर से अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा प्रारंभ करने का प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग करते हुए विरोध शुरू कर दिया। अवरोध के बीच समय लेकर नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता भीष्मराज आङदेम्बे ने कहा कि नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की उपस्थिति आवश्यक और अनिवार्य है। विपक्षी सांसदों द्वारा लगातार विरोध जारी रहने पर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मुख्य सचेतक कविन्द्र बुरला कोटी ने कहा कि नीति तथा कार्यक्रम की चर्चा में प्रधानमंत्री की उपस्थिति कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद किस नियम के तहत प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती, ये स्पष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कई पुराने नियमों को बदलते हुए आगे बढ़ रही है। श्रम संस्कृति पार्टी के अध्यक्ष हर्क सापांग ने प्रधानमंत्री शाह के अपने ही नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा में उपस्थित न रहने पर नाराजगी जताते हुए बैठक से बाहर निकल गए। आज की बैठक में सभामुख हरियाल ने एमाले संसदीय दल के नेता राम बहादुर थापा द्वारा मंगलवार की बैठक में दिए गए वक्तव्य को संसद के रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश भी दिया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11:15 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में आर्थिक वर्ष 83-84 के लिए सरकार की नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा शुरू हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से अर्थमंत्री स्वर्णिम वागले ने राष्ट्रपति द्वारा संघीय संसद की संयुक्त बैठक में प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 83-84 के लिए सरकार की नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद चर्चा प्रारंभ हुई। बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम पर भाग लेते हुए सांसदों ने कहा कि यह नीति तथा कार्यक्रम वास्तविक किसानों को राहत देने में असफल रहा है। सांसदों ने कहा कि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम नागरिकों में आशा और भरोसा जगाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने प्राकृतिक गैस उत्पादन और उसके उचित प्रयोग, जलविद्युत परियोजनाओं के प्राथमिकीकरण जैसे विषयों को शामिल करने का सुझाव भी दिया। सांसदों ने कहा कि वंचित वर्ग, मध्य प्रदेश, सुदृढ़ संघीयता और समावेशिता जैसे मुद्दों पर नीति तथा कार्यक्रम मौन है और सरकार की कार्यशैली तथा नीतियों में एकरूपता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के संसाधनों के उचित परिचालन, कृषि, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी बैठक में विधान व्यवस्थापन समिति के सभापति कृष्ण बहादुर रोकाया ने अभौतिक सांस्कृतिक संपदा संरक्षण विधेयक 2081 से संबंधित समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की। इससे पहले राष्ट्रीय सभा की बैठक में सांसदों ने प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह से सदन और प्रश्नों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होने की मांग करते हुए सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। सांसदों ने सुकुम्बासी लोगों के उचित प्रबंधन की योजना के बिना उन्हें घर से बेघर करने का आरोप लगाते हुए उनके लिए आवास, भोजन और रोजगार के उचित व्यवस्थापन करने का भी मांग की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल सुबह 11:15 बजे के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सरकार ने नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 को स्वीकृति देने का निर्णय किया है। मंत्री परिषद की आज हुई बैठक में नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 को स्वीकृत करने का निर्णय किया गया। ये जानकारी संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने दी। बैठक ने इलेक्ट्रॉनिकल सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश 2079 में संशोधन को भी स्वीकृति देने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने सरकारी निवेश प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में प्रतिनिधि सभा के सदस्य सुशील खड़का और योगेश गौचन थकाली को मनोनीत करने का निर्णय किया है। इसके अलावा बैठक ने भूमि संबंधी 21वें संशोधन नियमावली 2083 को भी स्वीकृति देने का निर्णय किया है। ये जानकारी संचार मंत्री डॉ तिमल सिन्हा ने दी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक ने पार्टी का प्रथम महाधिवेशन आगामी आषाढ़ महीने में चितवन में आयोजित करने का निर्णय किया है। पार्टी सभापति रवि लामिछाने की अध्यक्षता में आज आयोजित केंद्रीय कार्य समिति बैठक ने प्रथम महाधिवेशन आगामी आषाढ़ 7, 8 और 9 गते आयोजित करने का निर्णय किया है। ये जानकारी पार्टी संसदीय दल के सचेतक प्रकाश चंद्र परियार ने दी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा कि संस्थागत भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर राज्य के संसाधनों को जनता के हित में उपयोग करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। संचार मंत्रालय में आज आयोजित पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में मंत्री डॉ तिमल सिन्हा ने कहा कि यदि सरकार के किसी भी निकाय का उपयोग किसी के उद्देश्य या स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता हुआ पाया गया तो राज्य के निकायों द्वारा उस स्थिति की गंभीर और निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने इंटरनेट सेवा विस्तार के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पहले चरण में 4G सेवा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के बाद दूसरे चरण में 5G सेवा को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की तैयारी की जा रही है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति वीरेंद्र नगर के तत्कालीन सदस्य सचिवों सहित 5 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में मामला दायर किया है। दुकान और कवल भाड़े से प्राप्त आय को बैंक में जमा न कर उस आय में अनियमितता करने के आरोप में तत्कालीन सदस्य सचिव टीकाराम ढकाल के खिलाफ 64,28,000 से अधिक की क्लेम्ड अमाउंट का दावा करते हुए मामला दायर किया गया है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता सुरेश न्योपाने ने दी। इसी तरह आयोग ने तत्कालीन सदस्य सचिव नरहरि तिवारी के खिलाफ 1,04,71,000 और गहेंद्र बहादुर डांगी के खिलाफ 72,78,000 से अधिक की क्लेम्ड अमाउंट का दावा करते हुए मामला दायर किया है। आयोग ने तत्कालीन लेखा अधिकृत हरि बहादुर क्षेत्री की पत्नी सीमा कुमारी चंद्र क्षेत्री के खिलाफ 2,90,96,000 तथा तत्कालीन सह लेखापाल खड़क बहादुर राणा के खिलाफ 2,94,78,000 से अधिक क्लेम्ड अमाउंट का दावा करते हुए मामला दायर किया है। ये जानकारी प्रवक्ता न्योपाने ने दी। केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो की पुलिस टीम ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में नेपाल इन्वेस्टमेंट मेगा बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पांडे को सिंधुली से गिरफ्तार किया है। निजी क्षेत्र की स्मार्ट टेलीकॉम की पूरी संपत्ति, दूरसंचार पूर्वाधार, दूरसंचार प्रणाली और दूरसंचार संजाल को नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण में लिए जाने के बाद उस संपत्ति में सरकारी अधिकार समाप्त कर उसे नीलामी प्रक्रिया में शामिल करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो के प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठ के अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पांडे लोन रिकवरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उस नीलामी प्रक्रिया में शामिल थे जो जांच में सामने आया है। सरकार ने निजामती कर्मचारी राजनीति में संलग्न पाए जाने पर उन्हें सेवा से हटाने की चेतावनी दी है। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने आज सूचना जारी करते हुए निजामती कर्मचारियों को अनुशासन और आचरण संबंधी प्रावधानों का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया है। सूचना में कहा गया है कि नेपाल के संविधान और निजामती सेवा आईन के अनुसार निजामती सेवा राजनीतिक रूप से तटस्थ, निष्पक्ष और उत्तरदायी होना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि निजामती सेवा आईन के अनुसार यदि कोई कर्मचारी राजनीति में भाग लेता है तो उसे भविष्य में सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित किए बिना भी सेवा से हटाया जा सकता है। मंत्रालय ने बताया है कि कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक दल या उसके भातृ संगठनों की सदस्यता लेने की अनुमति नहीं है। सूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, संगठन की सदस्यता लेने या चुनाव में उम्मीदवार बनने वाले कर्मचारियों को सेवा से हटाने का प्रावधान है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति सी जिनफिंग के साथ अपनी बेहद अहम दो दिवसीय शिखर बैठक के लिए आज बीजिंग पहुंच गए हैं। ट्रंप एयरफोर्स वन विमान से चीन पहुंचे। चीन की राजधानी बीजिंग में उपराष्ट्रपति हान झेंग ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। हान झेंग चीन के शीर्ष नेताओं में शामिल हैं। उन्हें ट्रंप के स्वागत के लिए भेजे जाने को चीन की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति को विशेष सम्मान देने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार की आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध के कारण प्रतिनिधि सभा की बैठक स्थगित। वहीं नीति तथा कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सभा में चर्चा शुरू। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रथम महाधिवेशन आगामी आषाढ़ 7 से 9 तक चितवन में आयोजित करने का केन्द्रीय कार्य समिति का निर्णय। मंत्रिपरिषद द्वारा नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 स्वीकृत। सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति वीरेन्द्र नगर के तत्कालीन सदस्य सचिव टीकाराम ढकाल सहित 5 लोगों के खिलाफ अख्तियार द्वारा विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिवसीय चीन दौरे के दौरान आज बीजिंग में। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।